السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما على من جعله شاهدا مبشرا ونذيرا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورع وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بہترین دعا اس زمانے میں اور جن حالات سے انسانی معاشرہ گزر رہا ہے، اس کا حل مصیبتوں کا مشکل کشا کو پکارنا ہے. مشکل کشا زمان امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعه وفی کل ساعه ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قرآن شناسی، معرفت قرآن کے عنوان سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. موضوع قرآن، ٹاپک وائز جو قرآن کی بحث ہے آج کے دن، تفسیر موضوعی، تو بحث یہ چل رہی ہے کہ قرآن اور قرآن سے ہمارا لگاؤ اور اس کی معرفت، اس کو پہچاننا، انسائٹ قرآن کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارا معاشرہ اپنی حیات سے واقف ہوگا. اس لیے کہ قرآن کتاب حیات ہے، کتاب زندگی ہے، اور اس سے قربت گویا اصل دین سے قربت. قرآن سے قربت، اہل بیت سے قربت علیہم افضل الصلاۃ والسلام، اور یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. قرآن کی یہ آیت سورہ کہف کی کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور اس کے فضائل، اس کے ورچز کو، اس کے نالج کو، اس کے سائنسز کو لکھیں، کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں. اللہ کی یہ جو ڈیپتھ آف نالج ہے اللہ کی طرف سے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہاں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اس کے مقابل میں پھر بھی اسی طرح سے لایا جائے، پھر دوگنا کیا جائے، پھر بھی اس کے فضائل کو نہیں سمجھ پائیں. یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی گہری. یہ ایک ایک آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے. اگر انسان ذرا سا مومن غور کرے تو کتنی گہری بات ہے. ہم لوگ بہت زیادہ دوسری باتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن قرآن پہ کام نہیں کرتے. قرآن پہ جب کام کرنے لگیں گے اور ریسرچ کے طور پر، اور قرآن کو ایز اے ریسرچ کرنے والی بھی بک ہے، اور ایسی کہ कई साइंसेस इसमें मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां पर इब्तिदा अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ये बिस्मिल्लाह अल्लाह से लेकर रहमान और रहीम कई साइंसेस को लिए हुए हैं, और ये इस बात की दलील है कि कुरान पयाम रहमत लेकर के आया है, पयाम रहमानियत लेके आया है, मर्सी का पयाम लेकर आया है। इब्तिदा कुरान की जब बिस्मिल्लाह से हो रही है, और फिर ये भी बिस्मिल्लाह आवाज दे रहा है, जो कुछ भी है वो अल्लाह है, और अल्लाह से हटकर जो कुछ है वो खाली है, बेकार है। मन लदी फकदा कमा वजदा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह, दुआए अरफा में जो तुझको खो लिया उसने क्या पाया? कुछ भी नहीं, माइनस अल्लाह, कुछ भी नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद ये पयाम दे रहा। और अगर हम लोग सरा सा इस पे गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा बातें होंगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरबी में अलिफ लाम वगैरह के किस्में हैं, उनमें से ये जो अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ है, ऑल काइंड्स ऑफ अलिफ लाम जिनसे कहते हैं, यानी हर तरह की तारीफ। अगर किसी को जेबा है तो अल्लाह के लिए, और ये अल्लाह के जात के बगैर ये कायनात कायम है। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम, कायमियत कायनात की, ये दुनिया की जो बका है अल्लाह के जात की वजह से, और वो हय्यु कय्यूम है, वो इटर्नल है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इक्राम, हर चीज फना होने वाली है। उसके बाद रब्बिल आलमीन कह करके एक नए चैप्टर को साइंस को खोला पड़ा, रुबूबियत, वो जो टेक केयर करता है, न सिर्फ तखलीक है किया जाता है परवरदिगार, हर जर्रे की तरबियत, हर जर्रे के टेक केयर करने वाला जाते परवरदिगार, और आलमीन कह करके एक साइंस की बड़ी दुनिया खोल दी 1400 साल पहले, जिसका तसव्वुर भी नहीं था कि यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज हैं, 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और ये लफ्ज आलमीन वर्ल्ड्स कह करके ये कुरान ने एक नए चैप्टर खोला। तो जो लोग साइंस की लाइन में हमारे मुसलमान हैं, वो लोग कुरान को प्रेजेंट करेंगे और अपने ही लाइन से प्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बाइस, नई नस्लों के लिए दिलचस्पी का बायस। इसीलिए रसूल अकरम ने फरमाया, मतलब المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الثور اثر رجا ريحها طيب وطعمها طيب, जो मोमिन कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल ऑरेंज की, जो मीठा ऑरेंज है, तुरंत बेहतरीन मीठा ऑरेंज, खुशबू भी उसमें अच्छी है, मिठास भी उसमें अच्छी है। ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها حلو, مثالیں جو ہیں بہترین ہیں, مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال وہ خوشبو سے بھری ہوئی اورنج کی ہے, جس میں خوشبو بھی اچھی ہے, جس میں مٹھاس بھی اچھی ہے, وہ لذیذ ہے۔ اب جانتے ہیں گے آپ اورنج میں بھی کئی قسم ہیں, ترنج جب یہ ہو رہی ہے بات تو اس طرح سے سمجھنا, اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ اسلام نے انسان کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے سرکار رسالت ما صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت مٹھاس ہے اور اس میں خوشبو دیتی ہے, قرآن کی تلاوت, جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال مومن کی کیا ہے, وہ بھی پھل ہے لیکن کھجور ہے, खजूर में खुशबू नहीं है मगर मिठास जरूर है, चटना पड़ेगा। उसके बाद मथलुल मुनाफिक लदी यकरउल कुरान मथलुल रैहान रीहुहा तैयब व तअमुहा मर। मुनाफिक जो मुनाफिक है वो कुरान पढ़ता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे इसको रैहान कहते हैं, एक पत्ता जो होता है बेसिल उसको कहते हैं, बेसिल बेसिल बी एस आई आर रैहान। खुशबू अच्छी है लेकिन खाएंगे तो कड़वा है। तो मतलब मुनाफिक लदी ला यकरउल कुरान को मतलब हमदला लैस लहरीहुम व तअमुहा मर। वो मुनाफिक जो कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल हंजल की है, वो कड़वा फल है, नहीं खुशबू है और चखेंगे तो बहुत ही कड़वा। ये तमाम बातें कुरान की तिलावत के सिलसिले में एनकरेज करने की हैं और इसके मिसालें इस बात की दलील हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इंसान जब एंटर होगा कुरान में तब कहीं जा करके इन इसकी लज्जतों से इसकी खुशबू से वाकिफ हो सके। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक किताब को इंट्रोड्यूस किया था कुरान शनासी और शनासी के उनवान में उनवान से, वो है अल कुरान वल अक्ल। आयतुल्लाह सैयद नूरुद्दीन हुसैनी अराकी, और ये उस जमाने में तफसीर लिखी है इन्होंने जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और इनके पास सिवाय कुरान और एक किताब है हमारे यहाँ उसूल फिक्ह की इब्तदाई किताब है मुआलिम, मुआलिम थी और उनका बेटा था उनको दर्ज दे रहे थे। तो अब जो तफसीर लिखी है उनके हाफिजे की दल बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए कि ना उनके पास कोई लाइब्रेरी साथ है ना कुछ भी नहीं है। और बम्बारी में बहुत जगह एक जगह वो है जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस सूरह की तफसीर में कर रहा हूँ शायद सूरह हिज्र है, और वहां पर अब इस वक्त बम्बारी चल रही है, हम भाग करके बच के आए हैं गोशे में, उस आलम में भी जिसके माने कि वो कलम भी चला रहे थे और बंदूक भी चला रहे थे। यह है इल्म, यह है नॉलेज, दोनों जहाद बिल कलम जहाद बिल साइफ जिसको कहते हैं। हम तो जैसे जबानी जमा करके बोलते हैं जहाद बिल लसान जिसको कहते हैं, लेकिन मैदान जंग में तमाम वो बातिल की कुव्वतों से लड़ना और फिर तहरीर के जरिए से बातिल की कुव्वतों से लड़ना एक कमाल है। और ये कुरान के ये तफसीर अल कुरान बल अक्ल के उन्वान से ये खुद एक यूनिक है। इस तरह के मौजूदात की और भी तफसीरें मौजूद हैं लेकिन इस तफसीर के लिए जो उलमा ने रिसर्च करके बताया है कि इनके एक तो हाफिजे की दलील की है, दूसरा जो है ये अक्ल से करीब होने के बावजूद कोशिश की गई है इनके तरफ से कि कहीं तफसीर बिर्राय ना हो, तफसीर बिर्रा यानी अपनी ही तरफ से तफसीर करना और पीछे बैकअप के लिए दूसरी आयतें ना होना और मौसक हदीस सही हदीस का ना होना। बस मेरा दिल चाहता है एक तफसीर साहब ने लिख डाली थी, किताब लिख डाली थी कुरान जो मैं समझा। अरे भाई आप कौन हो, खुद एक किताब का नाम बता रहा है कि इसमें तफसीर बिर राय है, कुरान जो मैं समझा कोई नहीं समझा, कितना समझा कुरान, क्या समझोगे तुम, कुछ नहीं चाहे। कुरान तदब्बुर ताकुल तफाहुम तबस्सुर ऐसे अल्फाज, रिसर्च करो कंटेम्पलेशन करो, डीप जाओ, सुपरफिशियल मत रहो, सरफेस पे मत रहो, बहुत गहरी किताब है। और हम जो है किताब कुरान जो मैं समझा, तो तफसीर बिर्राय के अलावा क्या हो सकती मैं समझा। ये जो किताब है कुरान वल अक्ल, ये तो ये बात साबित करती है कि अक्ल का दारमदार कितना ज्यादा दीन इस्लाम में है। और اتنی حد تک ہے کہ انسان کی قوتوں میں سب سے بڑی قوت لائٹ جو ہے عقل ہے. ابن سکیت نے جب پوچھا مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس وقت اللہ کی جانب سے حجت کیا ہے, حجت کہتے ہیں وہ لائٹ گائیڈنگ سو فورس کو کہتے ہیں حجت, جس کو ٹارچ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حجت. سوال عام تھا بہت, اس زمانے کا جائنٹ اسکالر تھا, اس نے پوچھا کہ اس دور میں کون سی چیز ہے جو حجت ہے. اب اچھا وہ دور آج دور مجھے سوال تھا, آج کا دور بھی سوال کیا گیا, سمجھیے وہ سوال باقی ہے. جواب جو ہے اس دور کا بھی ہے, اس دور کا بھی ہے, آنے والے دور کا بھی. اس جواب کی خصوصیت ہے, بس سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہ سوچ رہا ہے کہ اس دور میں اس زمانے میں حجت کیا ہے. ہم جو امام زمانہ کو امام حجہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہتے ہیں, اس کی وجہ گائیڈنگ فورس ہے, امام گائیڈنگ فورس. تو جب یہ سوال کیا مولا نے کہا هو العقل, یعنی ایک عقل ایک ایسی حجت ہے جو ہر دور میں گائیڈنگ فورس ہے. وہ بالکل تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. واللہ هذا الجواب, واللہ هذا الجواب, واللہ هذا الجواب, اللہ کی قسم میں بہترین جواب ہے. هو الجواب, هو الجواب, اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. یہ ذوات مقدسات جنگ جمال میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا ہم کنفیوز ہیں, نہیں معلوم کدھر سچائی ہے, ایک طرف تو آپ دوسری طرف وہ, مولا کہہ سکتے تھے کہ میں رسول اکرم کی حدیث نہیں سنی کہ فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق حق علی کے ساتھ ہے, اور یہ دعا کہ پروردگار اس طرف حق کو موڑ دے جس طرف علی موڑے. مولا کہہ سکتے کہ انا الحق, مولا نے کہنا, مولا نے کہا حق کو پہچان پھر حق والے خود بخود معلوم ہو جائے. اعرف الحق تعرف اہلہ, اعرف الباطل تعرف اہلہ. یہاں بھی ابن سکیت نے جو سوال کیا ہے امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے کہ اس دور میں ایٹ دس ٹائم اینڈ مومنٹ واٹ از دی گائیڈنگ فورس, یعنی حجت کیا ہے, رہنما کون ہے. اس کے جواب میں امام رضا فرماتے تھے کہ رسول کہہ سکتے تھے کہ تمہیں نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بارہ ہوں گے, بارہ بھی قریش سے ہوں گے, کیا ہمارا نام نہیں سنا ہے. مولا نے نہیں کہا. ایک ایسا جواب ہے جو ہر دور کی امامت کو ثابت کرتا ہے, ہر دور کی حقیقت کو ثابت کرتا ہے. مولا نے فرمایا عقل, اور وہ مدہوش بغیر نہیں رہ سکا, بالکل دہرد آ گیا. ول جواب, واللہ ول جواب, یہی ہے جواب, حقیقت میں جواب. اگر عقل ہے تو تم امام تک بھی پہنچ جاؤ گے, رسالہ تک بھی پہنچو گے, پھر اللہ بھی مل جائے. عقل نہیں ہے پھر ایموشنل ہیں, پھر تو پھر وہ کبھی حاصل ہونے والا نہیں. تو اس کتاب کی خصوصیت تفسیر عقلی بنیادوں پر, اور عقل بھی ہمیں روکتی ہے قیاس سے. قیاس یا assumption جس کو عربی میں ظن کہتے ہیں, ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ جو assumptions ہیں, یہ جو ظن ہیں, تو کے بعد دعا جو ہے دوار اور نون, یہ assumptions حق تک نہیں لے جاتے. عقل خود کہتی ہے کہ assumptions میں نہ جاؤ, अक्ल गाइड करती है कि हक तक पहुंचना है तो तुम्हारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कियास भी नहीं होना चाहिए कभी अकली बुनियादों पर। कुरान को रिसर्च के उनवान से हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। इंशाल्लाह आइंदा जब शुरू करेंगे उसके बाद उसमें कुरान के कलेमात पर गौर पर बहस करें। इस साल मुहर्रम में हमने एक लफ्ज पर काम किया है कई जगह पर, अभी भी इंशाल्लाह शहजादी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूसी जा रही है उसमें भी मैं इस पर बहस करूंगा। قل كل يعمل على شاكلته हर एक अमल शाकेले के एतबार से है। लफ्ज शाकेला रखकर के कुरान ने दुनिया खोल दिया किसके लिए, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यानी एक्शन नतीजा है शाकेला का, ये कुरान कह रहा है। कुल रसूल कह दीजिए कुल्लु, एक नहीं हर एक आदमी जो कुल्लु यामालो अला शाकेलते ही, हर शख्स जो अमल करता है कैसे अमल करता है, अपने शाकेले के तबाद से। ये शाकेला क्या है, ये बहस कीजिए, रिसर्च कीजिए, जाइए डीप जाइए, इतना इन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को बता रहा है, ये साइंस है इंसान की। सूरह इसरा की आयत है 84 आयत है, बहुत खूबसूरत आयत, हर आयत खूबसूरत, लेकिन हम लोग तिलावत कुरान करते हैं, तदब्बुर दर कुरान हो जाए तो फिर मजा है। कुल्लु यअमलु अला शाकिलते, लफ्ज एक शाकिला है, एक दुनिया है शाकिला। उर्दू में उसका एक तर्जुमा नहीं हो सकता, एक लफ्ज नहीं हो सकता, कुरान कमियां है अरबी लफ्ज की, ट्रांसलेशन बहुत ही मुश्किल होता कुरान का ट्रांसलेशन। शाकिला डिस्पोजिशन को कहते हैं उर्दू में, मिजाज तबीयत, इंसान की तबीयत, इंसान का मिजाज, रवैया, उर्दू में और जरा रवैया जब करीब हो रहा है शाकिला से। अभी दो तीन अल्फाज जब बोलूंगा तो तब कहीं हमारे जहन में आएगी कोई चीज है शाकिला। अब मैं दो तीन अल्फाज, रवैया, इंसान की सोच, उसका मिजाज, उसकी मिजाज तबीयत, ये दो चार अल्फाज कहने के बाद जरा सा जिसको कहते हैं हम लोग तकरीब जहनी, यानी नियरनेस टू दी रीजनिंग, ये हमें करीब कर रहा है। तो ये क्या बता रहा कुरान, मसलन मेरा बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो शाकेला है, ये शाकेला बना कैसा है, ये बहस है। या ये शाकेला बना है वालिदैन से, जिसको आजकल की दुनिया में जीनियालॉजी कहते हैं, बिहेवियर की स्टडी करने वाले, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने वाले। आज मॉडर्न साइंस में इस बहस होती है कि जीन्स, इंसान के इफेक्ट ऑफ द जीन्स, अगर मेरा बच्चा इस तरह से अमल कर रहा है तो इसके मानिए कि मेरी बीवी के असरात हैं जीन्स के, मेरे असरात हैं, फिर मेरे माँ के, मेरी माँ के, मेरे वालिद के, फिर उनके, यहाँ तक कि 70 नस्लें, ये सब मिलकर के शाकिला बन रहे हैं। और फिर एक तो शाकिला बना जिसको इंसान ने पेरेंट्स से लिया है, और जैसे ही दुनिया में आया वो माहौल में आया तो उसका मिजाज बन रहा है माहौल के एतबार से। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से और आगे बढ़े तो मान लो स्कूल गया, स्कूल में टीचर्स हैं, स्कूल में क्लासमेट्स हैं, कुछ बिहेवियर को वहां से लिया, एक ही चीज है लेकिन उसके असरात जो ले रहा है कई हैं, ये सब फैक्टर्स साइंटिफिक फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत ही गौर करने की बात है कि अल कुरान, कुरान वल अक्ल, कुरान और अक्ल, तो ये अकली बहस है कि नहीं है? एक लफ्ज अल्लाह ताला ने रख करके एक दुनिया ये रिसर्च को खोल दिया दुनिया के साथ। इसीलिए हदीस में है कि अगर कोई शख्स कुरान को पढ़ता है, हर हर्फ के अवज में एक नूरी मखलूक अल्लाह पैदा करता है, एक एंजल पैदा करता है जो उसके लिए इस्तग़फार करता है। ये क्यों है? इसलिए कि हक यही है, इससे हक का कुछ है ही नहीं है। हत्ता मासूम अलैहिम अफजलु सलातो सलाम भी अपनी अहादीस में साफ ऐलान करते हैं कि अगर हमारी अहादीस कुरान से मिलती हैं तो सही है, तो फिर अखली बुनियादों पर क्या हो गया? कुरान मेयार कुरान बना। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब यूनिवर्सल है, आफाकी है। खुरासान में उस वक्त वो प्रोविंस छोटा सा, आज जो है खुरासान की कैफियत, आज ईरान की कैफियत, आज दुनिया की कैफियत, दुनिया के हालात, उन सब हालात के इतने चेंजेस के बावजूद भी वो जवाब जो मौला का है वो अतम है, कंप्लीट है। यानी इंसान के लिए गाइडिंग फोर्स अक्ल है, तो अकली बुनियादों पर दीन है, जज्बाती बुनियादों पर दीन नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि अफजलु सलातो वसलाम का हमने अकली बुनियादों पर माना है, अहले बैत को हमने अकली बुनियादों पर माना है, जज्बाती बुनियादों पर। अकल जो है तमीज करती है हक और बातिल के दरमियान, गुमान भी नहीं, जन भी नहीं, अजम्पशंस नहीं है, सर्टेंटी है, यकीन है। ये अकल हमको यकीन तक पहुंचाती है। लौ तअलमुना इल्मा इल्मल यकीन लतरउनल जहीम, अगर तुम इल्म यकीन हासिल कर लो तो यकीनन तुम जो है कि अगर तुम यकीन हासिल करो तुम देख सकोगे हकीकत। अलबत्त देखने की ये सर्टेनिटी के स्टेजेस हैं, कितना हद तक हम लोग इस पर काम करते हैं अकॉर्डिंगली अपने तकवे परहेजगारी के एतबार से इंसान देखता। तो बारहों में आ गए सैयद नूरुद्दीन हुसैनी अराकी, ईरानी आराके, लेकिन नजफ में पढ़ते थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये क्या तफसीर लिखी है। यहां पर वो तफसीर के लिखने का अंगेजा के माने क्या कॉज बना, मोटिवेट क्या था, मोटिवेशन क्या था, क्यों मैंने ये तफसीर लिखी। अला अन्नहु लम्मा ज़कर ली बादु अख़वानी हुआ जनाब अल फ़ाज़िल वस्सिद, एक मेरे दोस्त से उन्होंने सवाल ये किया कि सैयद अब्दुल रसूल यजदी जो काजमैन में ये सवाल करते हैं, कहते हैं कि ये जो वस्तर मिन्नी अन अक्तुब रद्द अला बाद शयातीन الغرب الراد على القرآن بكوني على خلاف العقل। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। Why did I write? मैंने पेन डाउन क्यों किया इस तफसीर को? उसकी वजह यह है कि फैजा में ये बहसें हो रही थी कि कुरान जो है अकली नहीं है। तो मेरे एक मेरे दोस्त क्लासमेट उन्होंने अब्दुल रसूल यजदी ने सवाल ये किया कि ये मगरबी दुनिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, बम्बारमेंट हो रही है, हम ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये हमले जो हो रहे हैं कल्चरल इन्वेजन्स जो हो रहे हैं आज के, हर दौर में इन लोगों ने कोशिश की है, हर दौर में इन्होंने कोशिश की है इस बात को समझाने की, इस बात को बताने की, रिलीजन इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, मजहब जो है कोई सोचने की बात नहीं। अब आती है फोकस करते हैं इस्लाम और कुरान पे, कुरान जो है अकली बुनियादों पर नहीं। हत्ता यूनिवर्सिटीज में भी जो आज जो क्लैशेस हैं इस्लाम के और मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं, या एक सेक्युलर दुनिया के दरमियान जो टगाफर है, जो कल्चरल वॉर है, इसकी बुनियाद यही है। यह साबित करना चाहते हैं कि कुरान मजीद आसमानी किताब एक सुपर नेचुरल एक चीज ऐसी कोई नहीं है, अकली बुनियादों पर नहीं है। और यह आपका हमारा फरीजा जो दीन और ईमान रखने वालों का फरीजा है कि साबित करें यह अकली। तो एक किताब लिखने का को मोटिवेट जो किया गया है, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है, मुहर्रिक अमल यह है, क्या है कि दोस्त ने कहा कि मगरबी दुनिया के तहज्जुम हो रहा है, बराबर मुसलसल कहते जा रहे हैं कि ये कुरान अकली नहीं है, अब ये किताब लिखी है और ये कलम उठाते हैं, शुरू करते हैं कुरान वाला। अल्लाह इंशाअल्लाह तमाम उलमा की ये जो कलम काम करते हैं, जुबान वगैरह खिदमत करने वाले, इनके लिए उनके तौफीकात में से जो गुजर चुके हैं उनके दर्जा को बुलंद करें, उनके वजह ख्याल को बेहतर से बेहतर करें, उनको जवार इमाम में जगह इनायत फरमा, गौर करें बहुत अच्छी तरह से। तो ये तहाजम आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब तक बच्चा छोटा है उस वक्त जरा आप अपने अकीदे वगैरह को संभाल कर रखें, और आप ले जाते हैं मदरसों को सैटरडे कहीं संडे कहीं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके जहन को जरा आसान संभाल के रखना आसान नहीं, इसलिए कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ रीजनिंग, आजादी के नाम से, अकल के नाम से गुमराह करते। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि तमाम टॉपिक और सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी में बम्बार्डमेंट की तरह से होने वाले हैं, उसको पहले ही बचपने से ही घर में डिस्कशन करने लगे, तो इसमें माँ बाप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसमें मैं तो कहता हूं ग्रो इन रिलीजन, ग्रो विथ रिलीजन, तब कहीं समझ में आएगी बात, वरना जैसे ही बच्चा जाएगा यूनिवर्सिटी में और अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, असरात इतने खराब हों कि उसके असरात या इधर हो जाएगा या उधर। अगर पहले से फाउंडेशन अच्छा है तो वो पुख्ता हो जाएगा, सवालात की तलाश करेगा, जवाबात की तलाश करेगा और अच्छे जवाबात देने की तैयारी करेगा और डिफेंस करेगा अपने अकायद। लेकिन जरा जरा सा झोल होगा तो हाथ से बच्चे निकल जाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम लोग उसको तैयार करना है, हमारी नई नस्लों को। हम सबको खौफ है कि क्या होगा दूसरी नस्ल का, क्या होगा तीसरी का, चौथी का, लेकिन कभी हम लोग काम नहीं करते इस सिलसिले में। काम करना है अकली बुनियादों पर, रीजनिंग की बुनियादों पर, कम्युनिकेशन की बुनियादों पर। क्लैशेस दो चीजों की अफराई था, मन इत्तखदा इलाहा हु हवा, सूरह जासिया 45 चैप्टर है उसके 23वें आयत। क्या तुमने नहीं देखा जिसने हवा, हवा कहते हैं ख्वाहिशात, यानी डिजायर्स, अपने ओन कैप्रिज डिजायर्स, अपने ओन मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, बस मैं समझता हूं कुरान ये दीन वगैरह बेकार है, ये मैं समझता हूं। कुरान इसको हवा कहता है, कुरान हिदायत की किताब है, हवा की किताब नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा, वा सरकारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगु हवा, हवा के जरिए से नहीं की है, खुदा के जरिए से। अगर हम इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो यकीनन बहुत ज्यादा इसमें उलझ जाए। चुनाचे आज टेक्नोलॉजिकल मेस्मराइजिंग एडवांसमेंट इंसान को इतना मदहोश कर चुकी है कि इंसान बिल्कुल भुला चुका है। पर ये गैजेट ने हमें हाईजैक कर लिया। इत्तखदा इलाहा हवा अदल्लाहु अल्लाहु अला इल्मिन, यानी कि कोई आम इंसान है, इल्म के बावजूद, साइंटिस्ट होने के बावजूद इनकार कर रहा है अल्लाह। तो जो क्लैशेस क्या है, क्लैशेस कहता है कुरान से हट, कुरान कहता है कुरान से हटकर है जो भी है वह हवा है, खुदा नहीं है, हिदायत नहीं है। और दुनिया ये हवा वाले कहते हैं कुरान कुछ भी नहीं, जबकि 1400 साल पहले कुरान ने ऐसी बातें साबित कर दी हैं कि जो 1400 साल बाद साइंटिफिक दुनिया साबित कर रही है। क्या ये अकली नहीं है? इसीलिए हमारी जो नई नस्लें जवान हैं उनको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अल्लाह पंजतन पांच इमाम बारह मासूम चौदह, ये बेहतरीन बहस है, लेकिन इसको अकली बुनियादों पर रीजनिंग के उस लेवल पे लाना चाहिए कि बच्चे अपने अकायद को डिफेंस कर सके, वरना वी लूज देम। खो ना जाए कहीं जुल्मत में तुम्हारे बच्चे, शमे कुरान की लौ और ज्यादा पाए, तेज करो। सरकार ने फरमाया कि एक जमाना आने वाला सयाति अलन्नास ज़मानों, एक जमाना आने वाला है बहुत ही अल्लाह। हदीस में है कि सुबह मोमिन रहेगा, शाम में जो है मुश्रिक हो जाए, शाम में सोएगा तो मोमिन रहेगा, सुबह जो है मुश्रिक है काफिर हो जाए। मलामी मोमिन अलैहिस्सलाम में दुआ जो है फज्र में नमाज उठने के बाद ये दुआ मौला की खूबसूरत दुआ है, मौला फरमाते हैं परवरदिगार शुक्र है तेरा कि मोमिनन, मैं जो उठा हूँ मोमिन हूँ, अभी ईमान हमारा कम। रसूल अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाना आने वाला है कि रात जो है मोमिन सोया तो सुबह जो नहीं रहा, क्या हो नहीं रहा है, हो रहा है। ये हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, ये क्या है दिन, ये क्या है वगैरह, ठीक है आप ट्रेडिशंस को हटाइए, कुरान तो सच्चा है उस पर काम कीजिए। अहले बैत तो सच्चे हैं अलैहिम अफ़ज़लुस्सलाम, उन पर काम कीजिए और अखली बुनियादों पर काम कीजिए। रीजनिंग होना चाहिए, कंटेम्प्लेशन होना चाहिए, डीप थॉट्स होना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। तो आप अगर कुरान पढ़े तो कई साइंसेस में ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हर आयत को, पॉलिटिकल साइंस भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, लीजिए साइंस के जितने भी नाम है सब मौजूद है। अल्लाह नूर समावाते वाला उसके कोई ऐसी मामूली चीज है नहीं है, अकली बुनियाद पर जाओ तलाश करो। इन्नाफी खल के समावत वाले ये तखलीक कायनात में नशानियां हैं, साइंसेस हैं, किसके लिए, डमी के लिए ना, लिल अलबाब, जिसके पास लुब हो, शार्पनेस हो, अकल से भी आगे बात की बात है लुब। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ध रब्बना मा खलक्त हाज़ा बातिल। बहुत ही उम्मीद है कि गौर और फिक्र करें, इस पे काम करें और उम्मीद है कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि कुरान मजीद के इस अकली बुनियाद होने पर, कुरान के इस पे काम करें, हमारे दीन को अकली बुनियादों पर रखें। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि वो हमारे बच्चे मुसलमान के बच्चे हैं, हैं रहना चाहिए, लेकिन इस्लाम के बच्चे बनाना, चिल्ड्रन ऑफ इस्लाम। कब होगा जबकि हम लोग काम करें इसमें, माँ बाप इस पर काम करें, और कोशिश जब तक नहीं होगी नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मेरा बच्चा कुरान शुरू किया उस वक्त एक फंक्शन हुआ, कुरान खत्म किया उस वक्त एक फंक्शन हुआ, उसके बाद फिर कभी जिंदगी में नहीं हुआ। ना ऐसा नहीं, जिस तरह से जनाब फिजा ने सोर्स ऑफ नॉलेज को, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कुरान ने बताया, कुरान बनाया था, अगर हम लोग कम्युनिकेशन में कुरान लाए बहुत अच्छा। बाज मोमिन बच्चे अच्छे, हमारे मोमिन बच्चे जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ राजीव हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि दूसरे लोग चंद आयतें पढ़ के आपको मुश्रिक साबित कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अल कुरान वल अक्ल। तो उम्मीद है कि हम लोग इस सिलसिले में बहुत ज्यादा एक चीज जो मैंने इस तहरीक में जो इन्होंने कहा है कि मुहर्रिक अमल, ये मुहर्रिक क्यों बना इस तफसीर के लिखने का, कि इनके एक दोस्त ने ये कहा कि मगरिबी तहाजुम ने कुरान को जो है अखली किताब नहीं कहा, इसलिए शनाख्त है दुश्मन, दुश्मन की शनाख्त, दुश्मन वार कहां करता है, जड़ों पे वार करता है, दुश्मन हमला कहां करता है, जड़ों पे करता है। जहां पर रेड लाइन बताया गया है कि वहां पे ना करो, वहीं पे आके हमला करो। सारे मुसलमान कम से कम इस बात में मुत्तहिद है कि कुरान ऑथेंटिक बुक है, अगर उसी में डाउट पैदा करो, और इसका जवाब डाउट का जवाब डाउट से नहीं है, यकीन से है, सर्टेनिटी से है, नॉलेज से है, अक्ल से है। अल कुरान वल अक्ल की तफसीर ये हमें गाइड कर रही है। एक आलिम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बमबारी हो रही थी, वो कलम हाथ में था, गन हाथ में था, और एक तफसीर लिखता है, उसकी बुनियाद अक्ल है। बहुत बड़ा, खुदा इंशाल्लाह दर्जात को आली करे, आली है, आली तर करें, और हमें तौफीक दे के कुरान से हम लोग अपने दिल को लगा सके, हमारा दिल कुरान से लग सके, कुरान हमारे लिए जिंदगी का एक महबर और एक सोर्स बने इंशाअल्लाह। जब बनेगा तो कामयाबी होगी, वरना जो है ना जो हालात हमारे हो रहे हैं वो अटके जाएंगे, और अल्लाह हम तमाम को इससे बचाए। इंशाअल्लाह आयत और गुफ्तगु होगी, अल्लाह हमें कुरान से करीब तर करे, और कुरान की को तिलावत की परवरदिगार जो से आना लैल वन्नहार, परवरदिगार इस तिलावत को, हमारे कुरान की तिलावत को रात और दिन हमेशा हमारी जबान से जारी रख, ताकि हम इसको इससे करीब हो सके। अगर किसी लाइब्रेरी में जाए पूछें कि कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक बताओ, तो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम ऑथेंटिक क्या है। हर किताब में कोई ना कोई झोल है, मगर ये वो किताब है कि ला रही काफी है। ये चैलेंज ही बहुत बड़ा चैलेंज है इंसानी माशरे के, इसमें किसी तरह का रायब, रायब यानी डाउट, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये चैलेंज है, तलाश कीजिए। उम्मीद है कि हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे और बच्चों को, नई नस्लों को बचाएंगे। हो अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को आग